नमस्सितेभ्य ॐ नमस्सितेभ्य ॐ नमस्सितेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं जेनियकसाय पाहुड मणेयणयमुज्जलं अनन्ततं गाहाहि विवरियं तं गुणहर भडारयं वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। द्वितीय पुस्तक द्वितीय अर्थाधिकार प्रकृति विभक्ति, उसमें मूल प्रकृति विभक्ति की बात चल रही है और हम पृष्ठ संख्या 36 पर आ गए। मंगलाचरण है जहाँ शुरू है ना, उसके लेफ्ट पेज पर पहला जहाँ से 22 नंबर की गाथा जहाँ लिखी है, जहाँ कषाय पाहुड़ शुरू हो जाता है, वहाँ लेफ्ट पेज पर हाँ उसी को हम मंगलाचरण के रूप में गाते हैं। गुणधर भट्टारक को यहाँ वंदन करके देखो लिखा है ना, जेनिह कसाय पाहुड़म अनेय नय मुज्जलम अनंतत्थम, यानी जिनके वो कषाय पाहुड़ में अनेक नयों से उज्जवल अनंत अर्थ जिसमें से भासित होता है निकलता है, गाहा ही विवरियम तम, और गाथाओं में जो उसकी रचना की है ऐसे गुणधर भट्टारकों को यहाँ वंदन करते हैं। अभी मूल प्रकृति में काल की बात चल रही है। देखो यह काल का प्रकरण पृष्ठ संख्या 27 से शुरू हुआ है, कालानुगम। तो सामान्य से काल यानी कषाय का चल रहा है ना, यहाँ पेज और दोष का, ये मौन्य का, मौन्य विभक्ति का, मूल प्रकृति का काल चल रहा है। तो सामान्य से उन्होंने क्या बताया, अनादि अनंत भी हो सकता है, कोई अभव्य जीव है, और जो भव्य है मोक्ष जाएंगे, अनादि शांत होता है। ये तो मूल प्रकृति की जिसको कहते ओघ से बता दिया। तो विशेषार्थ में उसको बता कि अभी आदेश में यानी हरेक नरक गति में, तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में वो काल घटित कर रहे हैं, उसमें एक जीव की अपेक्षा कितना हो सकता है। तो हमने देखा नरक गति में तो एक ही भव होगा, लगातार नरक गति नहीं हो सकती, इसलिए नरक गति में जघन्य काल 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट कितना होता है 33 सागर। देव गति में भी ऐसा ही, फिर हर एक नगर का नरक का जो जघन्य और उत्कृष्ट है उसको भी बता चुके, सातों नरकों की बात की। देव गति में भी ऐसा ही, उसमें भी भवनत्रिक के अलग अलग यानी भवनवासियों के, व्यंतरों के, ज्योतिषियों के और ऊपर के सभी स्वर्गों के जघन्य और उत्कृष्ट काल बता चुके। तिर्यंच गति में जघन्य कितना है और उत्कृष्ट कितना है, तो जघन्य के लिए एक क्षुद्र भव ग्रहण, और उत्कृष्ट कितना है तो लगातार तिर्यंच गति में भटकने का काल, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, तो उसमें भी कैसा है क्या वो हमने घटित किया था। अभी ये गति मार्गणा की बात, मनुष्य में भी ऐसा है ना, जघन्य कितना है मनुष्य में, एक क्षुद्र भव ग्रहण, और उत्कृष्ट कितना हो सकता है, हम पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्य मनुष्य गति में उत्कृष्ट काल। अब इंद्रिय मार्गणा की बात हमने बाद में देखी थी, ये चारों गतियों के बाद इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय आदि में सब में घटित किया, तो एक इंद्रिय में भी जघन्य काल सब जगह एक क्षुद्र भव ग्रहण एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, और उत्कृष्ट काल कितना है तो एक इंद्रिय में हमने देखा था, सामान्य सभी एक इंद्रिय अगर देखते हैं तो हमने असंख्यात पुद्गल परिवर्तन देखा था। अकेले बादर एकेंद्रियों का काल देखते हैं, तो बादर एकेंद्रियों में हमने कितना काल देखा था, ये पेज नंबर 32 निकालना। तो बादर एकेंद्रियों का उत्कृष्ट काल, लगातार बादर एकेंद्रियों में ही उत्पन्न होते, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को मिलकर लेना है। कितना देखा था याद है? अंगुल की असंख्या तो बहुत अच्छा। हाँ, बादर एकेंद्रियों में। अब अकेले पर्याप्तों में बादर में अगर हम लेते हैं तो संख्यात हजार वर्ष। अब सूक्ष्म में देखेंगे, सूक्ष्म में, हाँ, तो सूक्ष्म का दोनों का मिलकर असंख्यात लोक है, और हर एक का अलग अलग देखेंगे, पर्याप्तों का भी और अपर्याप्तों का भी। हाँ, तो अंतर्मूर्त होता है ये। फिर द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि की बात, हर एक में द्विंद्रिय आदि में भी जघन्य काल, एक शूद्र भव ग्रहण, और अधिक से अधिक काल द्विंद्रिय में भी हमने संख्यात हजार वर्ष देखा था। तीनों का उन्होंने संख्यात हजार बताया था। उत्कृष्ट काल संख्या था, 33 पृष्ठ पर यह बात हुई थी। फिर काय मार्गणा की अपेक्षा उन्होंने लगाया, जब इंद्रिय मार्गणा में ही एकेंद्रियों की बात हुई थी, वहीं पर स्थावर काय की बात की है, और पंचेंद्रियों के साथ त्रस काय की बात ली है। इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा एक साथ बताते हुए एकेंद्रिय की बात, एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक अलग अलग बता चुके, उसके बाद उन्होंने स्थावर काय पांच की अलग अलग बात की, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक आदि। तो उसमें हरेक का अपना अपना जघन्य काल, क्षुद्र भव ग्रहण, खुद्दा भव कहो या क्षुद्र भव कहो एक ही बात है। और उत्कृष्ट कितना है तो हमने देखा था असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ, कर्मसिद्धि वो बादर में ले, केवल पृथ्वी कायिक कितना लेंगे, तो पृथ्वी कायिक में बादर भी है और सूक्ष्म भी है। तो सामान्य पृथ्वी कायिक लेंगे, बादर, सूक्ष्म, उनके पर्याप्त, पर्याप्त सभी, तो कितने काल तक भटकेगा, तो असंख्यात लोक प्रमाण। और बादर पृथ्वी अलग अलग लेना, बादर एकेंद्रियों में हमने देखा था कि असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, यानी अंगुल का असंख्यात अभाव, तो एक एक बादर पृथ्वी या बादर अग्नि या बादर, इस तरह से अगर लेते हैं तो वहां भी कर्म स्थिति प्रमाण दिया था। ये 33 पृष्ठ पर सब बातें लिखी, 33 पर। कर्म स्थिति किसे कहना? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब बादर पृथ्वी का एक इन जनरल लिया था हमने, अकेले पर्याप्तों की लेते हैं तो बादर पृथ्वी कायिक में अधिक से अधिक 22,000 वर्ष है, बादर जल कायिक पर्याप्तों में 7,000 वर्ष, बादर अग्नि कायिक पर्याप्तों में 3 दिन, बादर वायु कायिक पर्याप्त में 3,000 वर्ष, और बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त में 10,000 वर्ष। अभी अपर्याप्तों में तो मालूम है हमें, अपर्याप्तों में तो जघन्य जो है खुद्दा भव है, और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त होता है, लगातार उसमें जन्मता रहे तो भी। अब सूक्ष्म सभी लिए, कौन से? सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म वायु का एक, और सूक्ष्म वनस्पति का एक। सूक्ष्म वनस्पति का एक में तो निगोधी होते हैं, सूक्ष्म निगोध, तो इनको पर्याप्त में भी और अपर्याप्त में भी, ऊपर जैसे हमने देखा था अंतर्मूर्त ही होता है, पर्याप्त में लगातार वो भी अंतर्मूर्त, अपर्याप्तों में लगातार वो भी अंतर्मूर्त है। इस तरह से हमने एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय और स्थावर काय की बात देखी, उसके बाद पंचेंद्रिय और त्रस की बात उन्होंने बताई, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त। उसी पृष्ठ पर उसमें भी जघन्य काल, क्षुद्र भव ग्रहण, नीचे के पैराग्राफ में, और उत्कृष्ट कितना है, तो पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट कितना होता है, तो 1,000 सागर प्लस पृथक्त्व पूर्व कोटि, या पूर्व कोटि पृथक्त्व, एक ही बात है, पहले कहो बाद में कहो। और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में कितना है, तो 100 पृथक्त्व सागर, वहां 1,000 लिए थे, इसमें पंचेंद्रिय, अकेले पंचेंद्रिय कहते तो पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए, संज्ञा संज्ञा तिरंच भी आ गए, तो उसमें तो 1000 सागर प्लस पृथक्त्व पूर्व कोटि। और अकेले पंचेंद्रिय पर्याप्तों में बीच में अपर्याप्त नहीं हो, लगातार पर्याप्त भव होते रहे तो 100 पृथक्त्व सागर। त्रस जीवों में त्रस में तो द्विंद्रिय से लेकर सब आ गए, वहां तो अकेले पंचेंद्रिय लिए थे, तो त्रस में कितना है तो 2000 सागर और पृथक्त्व पूर्व कोटि, जिसको हम साधिक 2000 सागर कहते हैं। और अकेले त्रस पर्याप्त जीव हो गए तो पूर्ण 2000 सागर है, उससे अधिक नहीं, पर्याप्तों में, बीच में अपर्याप्त भव नहीं किए तो। इस तरह से हमने उसकी स्थिति सब घटित करके देखी थी। 35 पृष्ठ से काय योगियों में वो घटित किया था, मनोयोगी और वचन योगी में 34 पृष्ठ पर हमने देखा था, जो 12वें गुणस्थान तक पांचों प्रकार के मनोयोग है, पांचों प्रकार के वचन योग भी है। तो 12वें गुणस्थान तक है तो उसमें विभक्ति वाले भी हो गए 11वें गुणस्थान तक के, और अविभक्ति वाले भी हो गए, इसलिए उसमें दोनों ही घटित करके दिखाया था उन्होंने। और उसमें वो एक समय कैसा घटित होता है वो भी, हाँ, घटित हुआ था अपने, हाँ, जघन्य काल मनोयोग का एक समय वहां घटित करके दिखाया था। अब काय योगियों की बात हम कल पढ़ रहे थे, उसको लेकर फिर उसका विशेषार्थ देखेंगे 35 पृष्ठ पर। अरविंद भाई ने कहा जरा जरा धीमे चलना, हाँ। अच्छी बात है, वो स्वयं तो समझते हैं, उनके अपने लिए नहीं बोल रहे, हाँ। नए लोगों को समझने में कठिनाई होती ना, हाँ। देखो काय योगियों की बात करते हैं, 35 पृष्ठ पर से फिर से दोबारा पढ़ेंगे काय योगी वाला। मोहनीय विभक्ति का कितना काल है, यहाँ मूल प्रकृति की बात चल रही है। मोहनी की विभक्ति का अर्थ होता है मोहनी की सत्ता वाले जीव, मूल जो मोहनीय प्रकृति है उसके भेद नहीं किए, वो उत्तर प्रकृति में करेंगे। यहाँ मूल प्रकृति में मोहनीय कर्म इतना ही लेना है, मोहनीय कर्म की सत्ता वाला जो मोहनीय की विभक्ति वाले ने, विभक्ति का काल कितना है जब कहते हैं तो मोहनीय की सत्ता वाले जीवों का काल समझना, विशिष्ट मार्गणा में। अब यहाँ अपनी मार्गणा कौन सी चल रही है, काय योग वाली, अपना क्राइटेरिया है काय योग, वो काय योग के भेद यहाँ नहीं लेना है। पहले तो जनरल बात करेंगे सभी काय योग, उसमें काय योग में कौन कौन आ गए, औदारिक औदारिक मिश्र आहारक आहारक में वो सब जो कुछ हो गए वो, तो कहते हैं जघन्य काल एक समय है। क्यों एक समय, क्योंकि काय योग पलट कर अन्य योग रूप हो जाता है, मनोयोग हो जाएगा, वचन योग हो जाएगा, तब उसकी अपेक्षा से भी हो सकता है। वैसे तो एक एक योग का काल कितना होता है, अंतर्मुहूर्त, परंतु मरण की अपेक्षा ये घटित हो सकता है। और उत्कृष्ट अनंत काल है, कितना है वो अनंत, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण। ये क्यों कहा होगा, हमें अभी नए लोग कुछ उसमें विचार करेंगे। बोलो बेन, आप नहीं कैसे बेन, जय बेन, हाँ। एकेंद्रियों में, एकेंद्रियों में तो काय योग ही चलता है, कौन कौन से काय योग है एकेंद्रियों के, हाँ, औदारिक औदारिक मिश्र और कारमाण, तीनों ही हो सकते। विग्रह गति में कारमाण भी हो सकता है, शुरू में औदारिक मिश्र और बाद में औदारिक, फिर भी तीनों ही काय योग है। तो इसलिए काय योग लगातार चलता रहे तो एकेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति हमने देखी थी, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। तो यहाँ काय योगियों के मनोयोग, सॉरी मोहनीय की जो सत्ता कितने काल तक रहेगी, यहाँ काय योग का जो काल है उतना ही मोहनीय की विभक्ति का काल कहेंगे हम। विभक्ति का काल कैसे कहेंगे, विशिष्ट योग में रहने का काल, अभी वो योग कितने काल तक चलेगा उतने काल तक हम कहेंगे यहाँ पर। तथा काय योगियों के मोहनीय अविभक्ति का, अभी काय योग है और मोहनीय का अविभक्ति है, ये कब हो सकता है, मोहनीय का अविभक्ति काय योग के साथ, हाँ, 11वें में नहीं, 11वें में मोहनीय की विभक्ति है ना, सत्ता है ना, हाँ, उदय नहीं है, तो 12वां 13वां हम ले सकते हैं। तो उसमें जघन्य और उत्कृष्ट काल मनोयोगियों के समान है। मनोयोगियों के ने एक समय घटित किया था ना वहां पर विभक्ति के साथ, यानी वो उसमें आते ही अभी पहले काय योग का काल बीत गया था, काय योग में एक समय बाकी था और काय योग में 12वें में आ गए एक समय के साथ, और एक समय होते ही उनका योग पलट गया, क्योंकि शुरू में योग का पलटना होता है ना। कल इसी की चर्चा हुई थी अपने, 12वें के शुरू में योग का पलटना हो सकता है, इसीलिए एक समय घटित हो जाता है। बाद में जब एकत्व वितर्क अविचार शुरू हो जाता है ध्यान, तब योग का पलटना रुक जाता है, एक ही योग चलेगा फिर उनका। अब उसमें ये तो सामान्य से काय योगी की बात की, अब औदारिक काय योग लेना है, तो औदारिक काय योग का अधिक से अधिक काल कितना होगा? तो एक इंद्रियों में औदारिक काय योग लगातार चलेगा, क्योंकि जहां दोन योगी है द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि, या जो पंचेंद्रिय है संगी, तीनों योग है, वहां तो उनका पलटना एक एक अंतर्मुहूर्त में होता ही है, लगातार सागरों तक एक योग चलेगा ऐसा कभी नहीं होगा। तो लगातार औदारिक का योग चले ऐसी एक ही अवस्था है एक इंद्रिय, वो भी कौन सी होगी? पर्याप्त। हाँ, क्योंकि लगातार जितनी आयु है उतने काल तक चलेगा, परंतु तो उसमें शुरू में कारमान का योग होगा इन केस, या औदारिक मिश्र है तो उसका काल उसमें से बाद करना पड़ा। तो कहते औदारिक का योगियों के मोनीय विभक्ति का उत्कृष्ट काल कितना है? देशों ने कुछ कम 22,000 वर्ष, ये ख्याल में आया? क्योंकि पृथ्वी काय की आयु इतनी है हमने देखी थी, यहाँ तो औदारिक काय इतना ही कहा, वो कौन से पृथ्वी काय है क्या जल का, ये चर्चा यहाँ नहीं की, परंतु हम समझते हैं इसलिए यहाँ लगा के देखना, जिसमें उत्कृष्ट होगा उस अपेक्षा से आ जाती है बात यहाँ। अब औदारिक मिश्र काय योगियों के मोनीय विभक्ति का जघन्य काल घटित करना है। औदारिक मिश्र कब होता है? विग्रह गति के बाद, विग्रह यानी जब वहां शरीर के परमाणु ग्रहण शुरू हो जाते हैं, पर्याप्ति, जब तक शरीर पर्याप्ति चलती है, शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही काय योग चालू हो जाता है औदारिक काय योग। उसके पूर्व तक, एक समय पूर्व तक वहां पर औदारिक मिश्र, परंतु आयु तो विग्रह गति से ही शुरू होती है। कोई जो ऐसे कि रुजु गति से जाते हैं, तो रुजु गति से जाएंगे तो औदारिक मिश्र डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। रुजु गति यानी बिना मोड़ वाली गति। तो यहां हमें कम से कम काल लेना है, तो वो तीन मोड़ वाला जीव लेना है। तो कारमान काय योग के तीन समय घटा देना और फिर क्षुद्र भव ग्रहण वाला लेना, तो उसकी मिनिमम आयु वाला, तो उसका ये औदारिक मिश्र का जघन्य काल होगा। देखो यहां क्या लिखा, ये ऊपर से छठी लाइन में, पांचवी लाइन में, औदारिक मिश्र काय योगियों के मोनीय विभक्ति का जघन्य काल तीन समय कम खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कैसा है? औदारिक मिश्र है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक, जो कोई पर्याप्तियों के लिए भी, किसी को कम से कम काल लगता है, किसी को मैक्सिमम लगता है, जघन्य से उत्कृष्ट तक अनेक भेद हो सकते हैं, तो उत्कृष्ट काल वाला जो है औदारिक मिश्र वाला उसको ले लेना वहां पर। औदारिक मिश्र का योग इतना ही लेना है, तो अपर्याप्तों का तो कम हो भी सकता है, पर निवृत्ति अपर्याप्त भी ले सकते हैं ना इसमें, जिसका जितना काल होगा उसमें से औदारिक मिश्र के साथ अधिक से अधिक जिसका काल होगा उसको वहां लेना। हाँ, आपका कहना वो कंटिन्यूअस अंतर्मुहूर्त तक यानी रुजु गति से जाते हुए कंटिन्यूअस अंतर्मुहूर्त तक, हाँ उसको भी ले सकते हैं। लगातार हमने देखे एक इंद्रियों के कितने हो सकते हैं रुजु गति से जाते हुए, उसको लेना वहां पर। रुजु गति क्यों? बीच में कारमान का योग नहीं चाहिए। औदारिक मिश्र औदारिक मिश्र औदारिक मिश्र लगातार अपर्याप्तम में ही घूमता रहे, जन्मता रहे, तो हमने देखे थे वो अपर्याप्त कितने भव हो सकते हैं। तो एक 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 इंद्रियों के एक एक भेद में जाएंगे तो 6012 सबके मिलकर 66132 एक इंद्रियों के, और सभी मिलाएंगे तो 66336 ये लगातार। और मोहनीय अविभक्ति का कितना काल है ये औदारिक मिश्र की बात चल रही है। औदारिक मिश्र है और मोहनी की सत्ता नहीं है, ऐसा कब होगा बोलो? आपको भी सोचना है, लक्ष्मी बहन को सोच। हाँ, समुद्घात में, वो कपाट समुद्घात में एक समय के लिए, उसमें उत्कृष्ट और जघन्य भेद नहीं होगा क्योंकि एक ही समय है वो। वैक्रिक का योगी और आहारक का योगी जीवों के मोहनीय विभक्ति, वो तो मोहनीय विभक्ति वाले ही हो गए, उसमें अविभक्ति होने का सवाल नहीं है। वैक्रिक के साथ और आहारक के साथ जघन्य और उत्कृष्ट काल मनोयोगियों के समान है, यानी एक समय है। ऐसा होता है ना, वैक्रिक का योग शुरू हो गया मरण के पहले, यहां मरण हुआ ऐसा नहीं कह सकते। उनकी देव की जो कोई आयु है, वचन योग मनोयोग करते करते वैक्रिक कायोग में आ गए और एक समय में मरण हुआ, ऐसा हो सकता है। या विक्रिया करने वाले जीव के भी वैक्रिक कायोग में मरण हुआ, विक्रिया के काल में, मनुष्य तिरंज भी विक्रिया करते हैं ना, उस काल में भी उनका मरण हो सकता है। या आहारक की भी ऐसी बात है, आहारक मिश्र अवस्था में मरण नहीं होता, परंतु आहारक शुरू हुआ और उनका मरण हो सकता है। या वहां भी मनोयोग वचन योग चलते हैं, तो मनोयोग से वचन योग से या काय योग में आ गए और एक समय में मरण हुआ, ऐसे भी वहां हो सकता है। या उनका काल पूरा हुआ आहारक का, वैक्रिक मिश्र की भी बात कर रहे हैं। वैक्रिक मिश्र में कितना है जघन्य काल, तो दोनों ही अंतर्मुहूर्त होगा, जो कुछ उत्कृष्ट और जघन्य उसमें भेद हो सकते उतना ही होगा, उसमें तो एक समय आदि वो बातें घटित नहीं होगी। कब होता है वैक्रिक मिश्र? जब देव में या नारकी में जन्म लेने के लिए जीव गया है और पर्याप्ति शुरू हुई है, तो शरीर पर्याप्ति होने तक वैक्रिक मिश्र का योग होता है, बाद में वैक्रिक का योग चालू हो जाता है। इसी प्रकार आहारक मिश्र का योगी, यानी उसमें भी अंतर्मूर्त ही होगा। उपशम सम्यक दृष्टि, ये भी अंतर्मूर्त होगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि, वो भी अंतर्मूर्त वाला है क्योंकि उसमें मरण नहीं है, तो मरण की अपेक्षा जहां कुछ घटित कर सकते थे वो बात यहां नहीं होगी। जीवों के जानना चाहिए कार्मण का योगियों के मोहनीय विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट तीन समय है। मोहनीय विभक्ति और कार्मण का योग कब होगा? हाँ बोलो विनोद भाई। मोहनीय की विभक्ति है और कार्मण का योग है विग्रह गति में। हाँ, और विभक्ति की बात चल रही मोहनीय की सत्ता होनी चाहिए, वो अविभक्ति के साथ होगा। अविभक्ति के साथ तीन समय होगा, उसमें जघन्य उत्कृष्ट नहीं होगा। विभक्ति है ना, यह नहीं भूलना हमको। देखो यहाँ लिखा ना लास्ट लाइन, अविभक्ति का कितना काल है, जघन्य उत्कृष्ट दोनों प्रकार से तीन समय काल है। अब ये तो हमने कल पढ़ा था पूरा, अभी इसके विशेषार्थ पढ़ते हैं। क्षपक सूक्ष्म सांप्राय, ये सूक्ष्म सांप्राय कौन सा गुणस्थान है? दसवा। परंतु क्षपक श्रेणी का लेना है क्योंकि अभी अविभक्ति होने जा रहा है ना, तो क्षपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के काल में एक समय शेष रहने पर जिसे काय योग की प्राप्ति होती है, तो अभी विभक्ति के साथ कितने समय रहेगा? दसवें के अंत समय में एक समय बाकी है और उसको विशिष्ट योग प्राप्त हुआ। अभी यहां काय योग की बात की, काय योग में आया और फिर वो बारहवें में चला गया, तो विभक्ति कितने काल तक रही? विभक्ति के साथ काय योग एक समय, उसकी अपेक्षा काय योग में मोह विभक्ति का जघन्य काल एक समय कहा है। मोह विभक्ति का जघन्य काल, अविभक्ति का नहीं अभी घटा रहे, पहले विभक्ति का घटा रहे। हाँ 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 आपका कहना है जब श्रेणी में जीव है, क्षपक श्रेणी हो या उपशम श्रेणी हो, मन इसीलिए हमने कल जो देखा था पृथक वितर्क विचार, योगों का भी पलटना होता है और जो विषय है ध्यान का वो भी पलटता है। बिल्कुल हाँ, एक एक गुणस्थान के काल से भी योगों का काल छोटा है, योग का काल बहुत छोटा है। आठवें में भी वो योगों का पलटना होगा, आठवें गुणस्थान जो छोटा अंतर्मूर्त है उसमें भी योगों का पलटना होगा, एक योग से दूसरा योग, योग से योगांतर कहते हैं उसको। आपका कहना यहाँ क्षपक सूक्ष्म सांप्राय क्यों लिया, ग्यारहवें वाला क्यों क्यों? हाँ अविभक्ति में जाना है क्योंकि ग्यारहवें में तो विभक्ति है, ग्यारहवें में भी गया तो विभक्ति उसकी सत्ता तो कायम है ना, इसीलिए उसको नहीं ले सकते, इसीलिए क्षपक लिया। क्योंकि अभी वो दसवें में से बारहवें में चला जाएगा, कायोग में आया है एक समय रहा और बारहवें में गया तो अविभक्ति हो गई, तो विभक्ति का काल एक समय होगा, भले कायोग उसका चलेगा अंतर्मूर्त तक, तो उसका एक समय कहा है। तथा काय योग का उत्कृष्ट काल, अभी उत्कृष्ट काल ये क्षपक की बात नहीं पूछ रहे, विभक्ति का उत्कृष्ट काल काय योग का, असंख्यात पुद्गल न हो गया, वह पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है। यहां औदारिक काय नहीं कहा, काय योग कहा, इसलिए उसमें औदारिक मिश्र कारमाण और औदारिक काय योग तीनों ही मिलकर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन घटित होता है। क्योंकि लगातार औदारिक 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 नहीं होगा, बीच में औदारिक मिश्र आना ही चाहिए। लगातार औदारिक कब होगा, वो 22,000 वर्ष वाले में औदारिक का योग, यहाँ अभी पहले में पहले काय योग की बात चल रही है, उसके भेदों की बात यहाँ नहीं ले रहे, वो बाद में बताएंगे। तथा काय योग का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है, इस अपेक्षा से काय योग में मोह विभक्ति का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण का है। काय योग यानी सामान्य से ले लिया, मनोयोग में अभी मनोयोग में घटित करते हैं, मोह अविभक्ति का, अविभक्ति ले रहे अभी, विभक्ति नहीं, विभक्ति का तो घटित होता है कि मनोयोग में आया दसवें के अंत में, एक समय में बारहवें में चले गया, तो वचन योग हो या मनोयोग हो या काय योग हो एक समय तो वैसे घटित होता है। अब अविभक्ति में एक समय घटित करना है, तो मनोयोग में मोह अविभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त पहले घटित करके लिख आए हैं, उसी प्रकार काय योग में मोह अविभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त घटित करके जानना। अब ये याद है क्या, देखो जरा फिर, मनोयोग का हमने कल देखा था यहाँ, चौंतीस पृष्ठ पर आई है ये बात, फिर भी ये ध्यान की बात उन्होंने कल घटित की थी ना, विशेषार्थ में आई थी, चौंतीस पृष्ठ पर नीचे के विशेषार्थ में है। देखो ये 55 नंबर का जो पॉइंट है जयधवला का, उसमें उन्होंने प्रश्न पूछा था कि पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी मिला 34 पृष्ठ, उन जीवों के मोहनीय विभक्ति और अविभक्ति का कितना काल है, तो दोनों ओर से जघन्य काल एक समय, एक समय तो हमने देखा था, एक समय में विशिष्ट योग में आया या दसवें में और बारहवें में चला गया तो एक समय घटित होता है, और अविभक्ति का भी एक समय घटित होगा और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। तो एक समय कैसे घटित होगा, तो पहले दसवें में उसने बहुत सारे उस विशिष्ट काय योग में या मनोयोग में था, एक समय बाकी था और बारहवें में आया, तो 12वें में तो हमने सुना है वहां तो एकत्व वितर्क होता है, तो पलटना कैसे होगा? तो शुरू में पृथक्त्व वितर्क होता है, उस अपेक्षा से पहले समय तक एक समय तक रहा, योग पलट गया, क्योंकि वहां शुरू में पृथक्त्व वितर्क ही है, इसलिए वो एक समय घटित होता है। ऐसे काय योग का भी समझना, कोई भी तीनों योग में से किसी योग का। अब इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं लाइन अंत में, इसी प्रकार औदारिक काय योगियों के मोह विभक्ति और मोह अविभक्ति का काल जानना। किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें औदारिक अभी बता रहे, औदारिक का काय योग, पहले अकेले काय योग की बात की थे, औदारिक काय योग जो है उसके मोह विभक्ति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष होता है। ये किस में देखा था हमने? पृथ्वी कायिक में। कम क्यों किया? शुरू में औदारिक मिश्र होता है, उसको कम कर अंतर्मूर्त कम घटाना पड़ेगा, क्योंकि औदारिक काय योग का उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इन्हें एक ही भव लेना है, दूसरा भव शुरू होता है तो शुरू में औदारिक मिश्र आना आएगा, रुजु गति से भी जाए, कारमान काय योग बीच में न भी हो तो औदारिक मिश्र तो होना ही चाहिए, इसलिए एक ही भव लेना है उत्कृष्ट एक इंद्रियों का, वो पृथ्वी कायिक में, बादर पृथ्वी कायिक में पर्याप्तों में घटित होता है। यहां कुछ कम से मतलब पर्याय के प्रारंभ में होने वाले, यानी जब पर्याप्ति शुरू होती है तब कारमण काय योग, ये तो विग्रह गति में हो जाता है, और औदारिक मिश्र काय योग के काल से है, वो अंतर्मूर्त उसमें से घटाना पड़ेगा। इन दोनों के सम्मिलित काल अंतर्मूर्त को 22,000 वर्ष में से कम कर देने पर शेष समस्त काल में औदारिक काल का योग होता है, क्योंकि एक इंद्रियों में अन्य कोई है नहीं ना, मिश्र हो गया, अभी औदारिक का योग चालू हो गया, अभी योगों का पलटना कैसे है, वहां तो अन्य कोई योग है ही नहीं है। औदारिक मिश्र का योग में मोह विभक्ति का जो जघन्य काल, जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण, और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट अंतर्मूर्त प्रमाण कहा है, इसका कारण यह है कि सबसे जघन्य क्षुद्र भव को ग्रहण करने वाले क्षुद्र भव में भी जघन्य और उत्कृष्ट अनेक भेद होते हैं, इसलिए सबसे जघन्य कहा। लब्धि अपर्याप्तक के औदारिक मिश्र का जघन्य काल होता है, तथा उत्कृष्ट काल संख्यात हजार क्षुद्र भवों में परिभ्रमण करके दोनों को लिए। देखो पहले में, पहले संख्यात हजार में हमने देखा था, कितने हजार, 66,000 देखा ना, उसको संख्यात में आते हैं वो, तो संख्यात हजार क्षुद्र भवों में परिभ्रमण करके जो पर्याप्तक में उत्पन्न होकर औदारिक काय योगी हो जाता है उसके होता है, यानी संख्यात हजार भव तो क्षुद्र भव के लिए लगातार औदारिक मिश्र 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 मिश्र, फिर पर्याप्तक में उत्पन्न हुआ, वहां भी शुरू में औदारिक मिश्र होगा ना उसके, इसलिए उसको भी उसमें ऐड कर दिया एक। ये हमने देखते ना, हमने एक अंतर्मूर्त में कितने भव होते अपर्याप्त लगातार होने के काल, 66,336। तो कहते तो भी इसका काल का प्रमाण अंतर्मूर्त होता है, वो एक पर्याप्तक भी उसमें मिला दो, 336, हाँ वही वही, वो संख्यात हजार में आ गए। औदारिक मिश्र काय योग में मोह अविभक्ति, ये हमने देखा था कहाँ होता है, औदारिक मिश्र है और मोह की अविभक्ति है, मोहनी की सत्ता नहीं है, बोलो बेन विचार करो, मोहनी की अविभक्ति कौन कौन से गुणस्थान में थे, 12, 13, ऊपर भी 14, अब यहाँ हमको कौन सा काय योग चाहिए, औदारिक मिश्र, 12वें वाले को कौन सा होगा, औदारिक मिश्र नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पर्याय के शुरू में होता है, नहीं वो तो औदारिक का योग है या मनोयोग है या वचन योग है, औदारिक मिश्र कब होगा, पर्याप्तियों के काल में होगा या केवली समुदात में कपाट अवस्था में होगा, पर्याप्ति के अब थे ना भी देवलानी में, कहीं से मर कर आता है जीव, छह पर्याप्ति शुरू होती है और दूसरी पर्याप्ति तक उसके औदारिक मिश्र होता है। देवो नारकियों को वैकृत मिश्र होगा। जैसे आहारक शरीर बनाने वाले की भी छह पर्याप्ति होती है, उनके भी उनके जो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक आहारक मिश्र होगा, परंतु बाकी जो गुणस्थान है ना, यह पांचवा गुणस्थान है, छठा सातवां आठवां नवा, यहाँ कहीं भी औदारिक मिश्र नहीं होता। तो कहाँ होता है? केवली में होता है। क्यों? क्योंकि वो तो हाँ वहाँ तो समुद्घात करते हैं और फिर वापस मूल शरीर में लौटते हैं, तो जाते समय कपाट में और फिर लौटते समय कपाट में औदारिक मिश्र का योग होता है। एक समय के लिए पहले औदारिक में से औदारिक मिश्र हो जाता है, फिर कारवाण हो जाता है, फिर वापस औदारिक मिश्र होता है, फिर का योग हो जाएगा। तो औदारिक मिश्र का योग में मोह अविभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल, एक समय सहयोगी केवली के कपाट समुद्घात की अपेक्षा कहा है। वैक्रिय का योग और आहारक का योग का जघन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा प्राप्त होता है, क्योंकि हो सकता है कि मनोयोग वचन योग में से वो विशिष्ट योग में आ गया और एक समय में मरण हो गया। तथा इनका उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त के बाद वो नियम से मन या वचन रूप हो जाता है। अतः इन योगों में मोह विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त मनोयोग के समान बन जाता है। वैक्रिक मिश्र आहारक, अ का आ करना उसको, आहारक मिश्र उपशम सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही होता है। ये तो मोह विभक्ति वाले ही है नहीं ये सब। यहाँ मोह विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा, क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो बताया है वैकृत मिश्र का काल कितना है? अंतर्मूर्त का है और उसमें कोई मरण का सवाल ही नहीं होता है। आहारक मिश्र में भी ऐसा है, वहां किसी का मरण नहीं होता। उपशम सम्यक्त्व के काल में हाँ मरण नहीं है और उसका काल ये द्वितीय उपशम में है, उसकी बात यहाँ नहीं की है। प्रथम उपशम सम्यक्त्व के काल में मरण नहीं होता है और सम्यक मिथ्या दृष्टि है उसका भी वो मरण नहीं है और अंतर्मूर्त काल है, उसको भी यहाँ ले लेना। और द्वितीय ऑप्शन भी लेते हैं, मरण भी होगा तो द्वितीय ऑप्शन भी चल रहा है और मोह विभक्ति भी चल रही है, ख्याल है ना? विभक्ति की बात चल करना है हमको। यह मोह विभक्ति का जघन्य उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। अब कारमण का योग का जघन्य काल एक समय, मोह विभक्ति वाली की बात चल रही है, क्योंकि हाँ एक मोड़ वाला विग्रह गति में एक मोड़ वाला, और उत्कृष्ट काल तीन समय तीन मोड़ वाला, मोह की विभक्ति वाला जीव लेना है इसलिए। अतः यहाँ मोह विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा। तथा प्रतर और लोकपुरण समुद्घात के समय कारमण का योग ही होता है जिसका काल तीन समय है। प्रतर, लोकपुरण और दोबारा प्रतर, ये तीन समय होगा। वहां कोई जघन्य प्रतर करके वापिस लौटे ऐसी नहीं बात होती, सभी के समीस आठों ही समय हो जाते। किसी को नहीं ना बस एक दंड किया वापस लौटा बस उसी में उसका काल काम हो गया, ऐसा नहीं, सभी समुद्घात के सभी स्टेप्स हो जाते। तो यहाँ कारमाण का योग जो है केवली के, वहाँ जघन्य भी और उत्कृष्ट भी तीन समय, उसमें कोई भेद ही नहीं ना, जघन्य उत्कृष्ट तीन समय ही होता है। अब ये तो काय मार्गणा हो गई, अब वेद मार्गणा, अभी अपना क्राइटेरिया बदल गया है। अब कौन से काय वाले क्या है वो नहीं सोचना है, कौन से वेद वाले है वो देखना है। वेद मार्गणा के अनुवाद से, तो वेद मार्गणा में कितने भेद होंगे? हाँ चार बोलो। हाँ एक तो अपगत वेदी और जो सवेदी में तीन वेद, स्त्री वाले पुरुष वाले नपुंसक वाले, तो वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीव के मोहनीय विभक्ति का कितना काल है? तो स्त्रीवेद के साथ रहने का जघन्य और उत्कृष्ट काल बताना पड़ेगा। तो स्त्रीवेदी के जघन्य काल एक समय और पुरुषवेदी के जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। पुरुषवेदी के लिए जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, एक मिनट हम देखेंगे उसको, हाँ विशेषार्थ में देखेंगे, यानी वो तो स्त्री वेद में से पुरुष वेद में चला गया मरण मर के। देखो पुरुष वेद का पुरुष वेद ही रहता है, उपशम श्रेणी में मरेगा तो भी अवेदी हुआ, फिर सवेदी हुआ, सवेदी हुआ स्त्री वेद के साथ चढ़ा था तो नौवे के ऊपर गया, ग्यारहवें में से लौटकर फिर नौवे में आया, नौवे में एक समय स्त्री वेद के साथ रहा, मरण हुआ तो पुरुष वेद ही हो गया, देव में चला गया ना तो पुरुष वेद हो गया। तो स्त्री वेद में एक समय के लिए हाँ वो होता है उसका। पुरुष वेद में जो अंतर्मुहूर्त है आयु के साथ लेना पड़ेगा, मरण आगे आगे मरकर हम पढ़ेंगे उसको। तथा दोनों के उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। ये सागरोपम शतपृथक्त्व और पल्ल्योपम शतपृथक्त्व हम पढ़ते हैं तो पहले शायद लिखा होगा, आगे देखेंगे। नपुसक वेदियों के मोहनीय विभक्ति का कितना काल है? जघन्य काल एक समय, जैसे हमने स्त्री वेदी में घटित किया था, नपुसक वेद के साथ चढ़ा रुतरा। और उत्कृष्ट अनंत काल है। ये अनंत काल क्यों है भानु बहन? बहुत अच्छा, एक केंद्रियों में जाता है तो अनंत काल तक एक केंद्रियों में ही रहेगा, उसका तो वेद की अपेक्षा काल बताया, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अपगत वेदियों के मोहनीय विभक्ति का कितना काल है? अपगत वेदी हो गए है और मोहनीय अविभक्ति है, तो अपगत वेदी कब से होते हैं? नवे के दूसरे भाग से। और अपगत वेदी में अविभक्ति कितने, पहले विभक्ति का बात करें, विभक्ति कहाँ तक है? अपगत वेदी हो गए और विभक्ति चलती रहे, हाँ शपक दसवें तक, कितना होगा दो काल? नवे का और दसवें का मिलाकर अंतर्मूर्ति होगा। जघन्य काल एक समय, अपगत वेदियों में जघन्य काल, जैसे वे उसमें हमने देखा था ना, हाँ अपगत वेदियों में एक समय कैसा घटित होगा? हाँ देखो अपगत वेदी है और मोह की विभक्ति है, मरण हुआ तो भी विभक्ति चल रही है ना, हाँ परंतु अपगत वेदी के साथ एक समय रहा, नहीं मरण की अपेक्षा, नहीं नहीं यहाँ अपगत वेदी में, नपुसक वेदी की तो बात हो गई, अपगत वेदी होते ही एक समय में मरा तो सवेदी हो गया, नवे के दूसरे भाग में गया, एक समय में मरण हो गया, तो अपगत वेदी एक समय तक रहा, मरकर देव में जन्मा तो पुरुष वेद हो गया उसका, सवेदी हो गया। उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी में मरण ही नहीं है, कौन सा उपशम श्रेणी में? दोनों बार हो सकता है, परंतु आठवें के प्रथम भाग में नहीं होता, वहां मरण नहीं है, आठवें के प्रथम भाग में चढ़ने वाले कहीं भी मरण हो सकता है, यहां अपगत वेद होते ही मरण हुआ एक समय तक रहकर। उतरते समय लेंगे तो वो तो पूरा चढ़ के उतरा तो अंतर्मूर्त गिनना पड़ेगा। जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, ये जो चढ़ के उतरा। अपगत वेदियों के मोहनीय अविभक्ति के काल का कथन ओघ के समान है। अपगत वेदी हो गए और मोहनीय की अविभक्ति है। अभी अपगत वेदी और कहां से लेना? बारहवें गुणस्थान से लेना। जगन्य काल कितना और उत्कृष्ट काल, हाँ देशों ने पूर्व कोटि, क्योंकि वो तेरहवें का काल लेना लंबा का लंबा, बारहवें तेरहवें का विशेषार्थ, जो पहले स्त्री वेदी या नपुंसक वेदी था अभी एक समय घटित कर रहे हैं, वह उपशम श्रेणी से उतरते समय सवेदी हुआ और दूसरे समय में मरकर पुरुष वेद के साथ देव हुआ। ये नियम से कैसे बताते हैं देव हुआ? हाँ भावलिंगी मुनि है तो देव, और कौन कौन देव में ही जाएंगे? समय दृष्टि तो कहीं भी जा सकता है ना। हाँ 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 भोग भूमि वाले भी देव होते हैं, परंतु यहाँ जो देखो ऐसा नियम है, जिसने पूर्व में आयु बांधी है, कौन सी, मनुष्य की, तिर्यंची की या नरक की, वो चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता, उसके पांचवा भी नहीं होता। तो जिसको पांचवा हुआ है, मुनि हुए और वो पद कायम है, तो उस अवस्था में मरकर तो नियम से देव में ही जाएंगे, और समय दर्शन होने के बाद जिन्होंने आयु बांधी वो तो देव की ही बांधेंगे। मनुष्यों की बात चल रही है यहाँ पर, मनुष्य तिर्यंचों की, क्योंकि उसकी अन्य आयु नहीं बनती है। मिथ्यात्व में जाने के बाद यदि आयु बांधता है तो बात अलग है। हाँ पांचवें गुणस्थान में आयु बांधेगा तो देव की ही बांधेगा, या जिसने देवायु बांधी है वही पांचवें में जा सकेगा, बद्धायु होगा और उसका पांचवा गुणस्थान आता है तो समझना इसकी तो आयु देवायु ही है बंधी हुई। हम देखते ना श्रेणिक, उसको इतना श्रावकोत्तम कहा, तीर्थंकर के पादमूल में था, पांचवा गुणस्थान क्यों नहीं आया? पहले नरकायु बंदी थी उसके, मनुष्यायु भी बंदी होगी और वहां भोगभूमि में भी जाने वाला होगा, तो भी उसके पांचवा छठा वो आगे की तो हो गई नहीं, पांचवा भी गुणस्थान नहीं आ सकता उसका। देखो ये विशेषार्थ, तो श्रेणी उतरते समय सवेदी हुआ, दूसरे समय में मरकर पुरुष वेद के साथ देव हुआ, उसके उक्त दोनों वेदों की अपेक्षा, स्त्री वेद में भी और नपुंसक वेद में एक समय जो घटित किया था ना, मौनी विभक्ति का काल एक समय पाया जाता है। जो पहले सवेदी था वो उपशम श्रेणी पर चढ़कर एक समय के लिए अपगेत वेदी हुआ और दूसरे समय में मरकर पुरुष वेदी हो गया, उसके मौनी विभक्ति का काल एक समय पाया जाता है। हाँ? हाँ, उतरते समय हुआ सवेदी होकर, तो वेदों की अपेक्षा एक समय काल पाया जाता है। स्त्री वेद के साथ वो हमने घटित किया था, स्त्री वेद के साथ एक समय कैसे घटित होगा? अपगत वेद में से सवेदी हुआ तो स्त्री वेदी हुआ और एक समय में मरा। अपगत वेद के साथ एक समय कैसे घटित करना? तो अपगत वेदी हुआ और एक समय में मरा चढ़ते समय। सवेदी में घटित करना है स्त्री वेद में या नपुंसक वेद में तो एक समय घटित होता है, और अपगत वेदी में एक समय, चढ़ते समय एक समय में मरा वो। पुरुष वेद की अपेक्षा, जो अंतर्मूर्त का प्रश्न था ना, पुरुष वेद की अपेक्षा मौनीय विभक्ति का जगन्य काल अंतर्मूर्त से कम नहीं हो सकता। अब यहां वो श्रेणी की बात भूल जाओ, कोई पुरुष वेदी पर्याप्त जीव, कम से कम आयु कितनी होगी? जब वेद होता है सभी लब्धियां पर्याप्तों को में तो नपुंसक वेद होता है, तो यहाँ पुरुष वेद और स्त्री वेद जो है वो गर्भजों में होते हैं और गर्भज तो पर्याप्त होते हैं, तो पर्याप्तों की मिनिमम आयु कितनी है? अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में वेद पलट गया, ऐसा हो सकता है ना? अन्य वेद में से पुरुष वेदी होकर जन्मा और फिर अन्य वेद में चला गया, यहाँ क्या लिखा है पढ़ा नहीं मैंने, पढ़ेंगे। पुरुष वेद की अपेक्षा मौनीय विभक्ति का जगन्य काल अंतर्मूर्त से कम नहीं हो सकता। वह इस प्रकार है, जो पहले पुरुष वेदी था वह उपशम श्रेणी से उतरते समय पुरुष वेदी होकर सबसे जगन्य अंतर्मूर्त, अच्छा अलग बात की उन्होंने, पुरुष वेदी होकर सबसे जगन्य अंतर्मूर्त काल तक विश्राम करके जब पुनः उपशम श्रेणी पर आरोहण करके अवेद भाव को प्राप्त होता है, तब उसके पुरुष वेद के साथ मोहिनी विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त पाया जाता है। बहुत अच्छा, यानी सादी वाला लिया। कैसे लिया? पहले अपगत वेदी हुआ था, फिर नीचे उतरा, नवे में आते ही पुरुष वेद फिर शुरू हुआ, तो नीचे उतरते उतरते छठे तक आ गए और फिर उपशम श्रेणी चढ़ी, तो पुरुष वेद का काल कितना हुआ? वो अंतर्मूर्त, क्योंकि अपगत वेदी में से पुरुष वेदी हुआ था और फिर चढ़ा तो फिर अपगत वेदी हुआ, तो पुरुष वेद का काल कितना रहा? अंतर्मूर्त। तब उसके पुरुष वेद के साथ मोहिनी विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त पाया जाता है। अब उत्कृष्ट रूप से जो ऊपर नहीं लिखा था, उन्होंने तो अपने अपने वेद का उत्कृष्ट काल समझो ऐसा कहा था। उत्कृष्ट रूप से स्त्री वेद और पुरुष वेद के साथ मोहिनी कर्म का काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण बतलाया है। यहाँ अपनी अपनी स्थिति से स्त्री वेदी और पुरुष वेदी की केवल एक पर्याय प्रमाण स्थिति का ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु जितनी पर्यायों में स्त्री वेद और पुरुष वेद की अविच्छिन्न धारा चलती है, और मैं जरा गैप चाहिए, तत्प्रमाण स्थिति लेना चाहिए। यानी लगातार स्त्री वेद अनेक भवों में चलेगा, तो कौन से पर्यायों में घूमेगा वो, कौन कौन से गतियों में? स्त्री वेद होना चाहिए। कौन सी गतियां मिल सकती उसको, बोल। हाँ, कौन गति मैं पूछ रही हूँ? हाँ, कौन सी होगी? मनुष्य और देव, तीनों ही उसमें स्त्री वेद पाए जाते हैं ना, तो तीनों ही हो सकते। अपना क्राइटेरिया स्त्री वेदी होने चाहिए। तो स्त्री वेद का उत्कृष्ट काल पल्योपम शतपृथक्त्व है। और पुरुष वेद का उत्कृष्ट काल सागरोपम शतपृथक्त्व है। यानी पृथक्त्व 100 सागर पुरुष वेद में, और स्त्री में हाँ एक भव हुआ 55 का, तो पृथक्त्व 100 पल्य, पृथक्त्व 100, यानी आपकी भाषा में हम लेते ना 800 पल्य, तो वहां देवी के भव हो गए, फिर मनुष्यों में आएंगे, फिर त्रियंचोन में चले जाएंगे, वो सब मिलकर हम देखते ना लगातार स्त्री के मनुष्य भव होंगे। तो हमने कल देखे थे 7 पूर्व कोटि और फिर 3 पल्य, फिर देवी में चले गए और वहां से आए, और वहां से वो मिथ्या दृष्टि में ले लेना उसको, क्योंकि स्त्री के भव चलना लगातार लेना है, तो त्रियंचनी भी हो जाएगी बीच में, उसके भी इतने सारे संगी असंगी दोनों में होते हैं स्त्री वेद, तो उसके भी इतने पूर्व कोटि के और पल्यों के भव ऐसे लगातार होता रहे तो स्त्री वेद के साथ, तो 100 पृथक्त्व पल्य, और इनके 100 पृथक्त्व सागर वहां पल्यों में, शत पृथक्त्व दोनों के लिए लिया वहां पल्यों में और इन सागरों में। इन दोनों वेदों के साथ मोहिनी विभक्ति का उत्कृष्ट काल भी इतना ही समझना चाहिए। एकेंद्रीय जीवों की प्रधानता से नपुसक वेद का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल न हो गया, परिवर्तन प्रमाण कहा है? सागर शतपथ क्यों? हाँ पहले, परंतु वो तो उसको लास्ट में रखो ना, 33 सागर होने के पहले मनुष्य भव जो कुछ गिनना है, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं पुरुष वेद के साथ? नपुंसक वेद के साथ मोहिनी कर्म का काल भी तत्प्रमाण सिद्ध होता है। अपगत वेदियों के मोहिनी विभक्ति चल रही है, अंतर्मूर से अधिक काल तक नहीं पाई जाती, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि अविभक्ति हो गई उसकी, सॉरी विभक्ति हो गई, अपगत वेदी हुआ, और उसका अधिक से अधिक काल कितना है? अंतर्मूर्त, क्योंकि वो 12वें में जाके ही अविभक्ति हो गया। या बारहवें में नहीं भी गया, अपगत वेदी के साथ विभक्ति चलनी है। उपशम श्रेणी वाला चढ़कर फिर नीचे आ गया तो सवेदी हो गया, उसका भी काल ले सकते। अब कषाय मार्गणा चलेगी, वेद मार्गणा हो गई। कषाय मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद होंगे, सकषाय और अकषाय, और कषाय में फिर क्रोधी मानी लोभी वगैरह वगैरह। क्रोधादि चारों कषाय वालों के मोनीय विभक्ति का कितना काल है, जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार से अंतर्मूर्त काल है। क्यों? क्रोध मान माया लो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में बदलता है, चारों एक साथ नहीं लेना है। कषायों का काल तो अनादि अनंत भी कहेंगे हम, हाँ, एक एक कषाय में। कषाय रहित जीवों के अपगत वेदियों के समान कथन करना चाहिए, जैसे अपगत वेदी में लिखा है वैसे अकषाय में भी कथन करना। तो अकषाय में कहाँ लेना, अकषाय और मोह का विभक्ति, और अकषाय और मोह की विभक्ति या अविभक्ति, फिर से अकषाय के साथ मोह की विभक्ति है ग्यारहवा गुणस्थान, और अकषाय के साथ मोहनीय की अविभक्ति है बारहवा तेरहवा चरण, इस तरह से उसको लगाना। विशेषार्थ, क्रोधादि चारों कषायों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, इसमें दो मत पाए जाते हैं। एक मत के अनुसार क्रोधादि कषाय एक समय रहकर भी मरणादिक के निमित्त से बदली जा सकती है, क्योंकि ऐसा कथन आता है कि विशिष्ट गति में जाता है तो शुरू के अंतर्मूर्त में कौन सी कषाय होगी। हरेक के ऐसे मनुष्य में मान होता है, त्रिनेत्र में माया होती है, देव में लोभ होता है पहले अंतर्मूर्त पहले समय से, और नारकियों में क्रोध होता है। तो ये दो मत है उसकी अपेक्षा से। मान लेते यहाँ मरण क्रोध में हुआ, एक समय के लिए क्रोध में गया और मरा और तिरंच में जन्मा, तो माया चालू हो जाएगी। उस अपेक्षा से एक समय घटित हो सकता है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। दूसरे मत के अनुसार क्रोधादि का जघन्य काल भी अंतर्मूर्त से कम नहीं होता, यहाँ दूसरी मान्यता का ही ग्रहण किया है, यानी वो जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त काल घटित कर रहे हैं। तदनुसार क्रोधादि चारों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। कषाय मार्गणा में यहाँ तक की बात होती है। अब ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से, जैसे कषाय में हमने कषाय वाले और कषाय रहित देखे ना, तो ज्ञान मार्गणा में ज्ञान सहित और ज्ञान रहित होगे कि नहीं होगे, नहीं हो सकते। तो हो सकते मति ज्ञानी या कुंभ श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी, ऐसे भेद होंगे ना, या सुज्ञानी और कुज्ञानी। तो ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मत्य ज्ञानी, मत्य ने मति अज्ञानी, और श्रुता ज्ञानी ने श्रुत अज्ञानी जीवों में मोनीय विभक्ति के काल की अपेक्षा तीन विकल्प होते हैं। यानी जो मिथ्या दृष्टि है उसमें विभक्ति का काल अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। ये सादि शांत किस में होगा? सादि मिथ्या दृष्टि में, हाँ, क्योंकि उसका मति अज्ञान सादि है, शांत है, तो उसका विभक्ति का भी काल सादि शांत। अनादि शांत समझ सकते हैं, अनादि से मिथ्या दृष्टि और अंत हो गया उसका, समय दर्शन हो गया। उनमें से जो सादि शांत विकल्प है उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त में वापस वो समय दृष्टि हो जाए तो जघन्य काल अंतर्मूर्त, कोई एक समय वाला नहीं हो सकता। एक समय के लिए मिथ्यात्व में आया और फिर वापस चला, ऐसा कभी नहीं होगा। और उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परिवर्तन होता है, हमने देखा था कल, वहां चर्चा हुई थी ना देवलाली में, एक बार समय दर्शन हो जाता है मिथ्यात्व में गया भी तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के पहले पहले वो आएगा, मनुष्य होगा, फिर वो श्रेणी मानेगा, सब कुछ होकर चला जाएगा मोक्ष। विभंग ज्ञानियों के मोनीय विभक्ति का कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल देशों न 33 सागर। कहाँ का होगा ये विभंग ज्ञान ने कु अवधि? हाँ, तो वहां तो अवधि कहेंगे, विभंग नहीं कहेंगे, सातवें नरक। ये देशों ने क्यों कहा? हाँ मयंक भाई, कुछ कम क्यों कहा मालूम है आपको? हाँ आप बोलो। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, वो भव प्रत्यय है तो भी। एक समय कहाँ लिया? हाँ, जगह मोहनीय ज्ञानी के विभक्ति का कितना का? जगह ने कहा एक समय वो उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया, मरण के पहले भी उत्पन्न हुआ, ऐसा भी हो सकता है ना। और यहाँ केवल वहां नहीं लेना है, 33 सागर वाले में एक समय नहीं घटित करना है। हाँ, एक समय अभी मनुष्य तिरंचो में ले लो ना। हाँ, ये नहीं, उत्पन्न हुआ मरण के समय उत्पन्न हुआ ऐसा भी ले सकते हैं ना हम। हाँ, और बाद में नष्ट हो गया, क्योंकि वो तो चलता नहीं आगे की वो में, विभंग ज्ञान चलता नहीं है। सम्यक अवधि ज्ञान है, सु अवधि, वो चलता है आगे के भव में, विभंग ज्ञान तो वही नष्ट हो जाता है। अच्छा, आपका कहना विभंग ज्ञान हुआ और फिर सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। पूछेंगे अभी। हमने तो स्वावधि के बारे में देखा ना, 12वें के अंतिम समय में अवधि ज्ञान हुआ। अरे तो यहाँ क्यों नहीं होता? बहु के अवधि अंतिम समय में किसी को विभंग ज्ञान हो सकता है ना। हाँ देखो, देशों ने में वो पर्याप्ति पूरी होने तक का वही लेना है। हाँ हाँ, वैकृत मिश्र में तो शरीर पर्याप्ति की बात है, यहाँ तो मन पर्याप्ति तक पूरी होनी चाहिए तभी है ना। हाँ, क्योंकि उसके उसके बिना वो नहीं होगा अवधि ज्ञान, को अवधि ज्ञान सभी पर्याप्ति पूरी होने चाहिए। देखो, मिश्र के लिए हम शरीर पर्याप्ति की कंडीशन है, परंतु ये मनोयोग कहो, क्योंकि वचन योग मनोयोग भी हम अपर्याप्त अवस्था में नहीं कहते, वो बल प्राण भी नहीं कहते। हाँ, आभिनिबोधि, अभी ये सुज्ञान की बात चल रही है। आभिनिबोधि कहने कौन सा? मति ज्ञान, हमने उसका अर्थ किया था, अभी क्या, नी क्या और बोध क्या। आभिनिबोधिक ज्ञान नाम क्यों पड़ा है? अभी देवलाली में चर्चा की थी। हाँ, अभी यानी सन्मुख, वहां इंद्रिय और वो विषय वो सन्मुख यानी इन कॉन्टैक्ट या जो उसके सामने विशिष्ट रेंज में होने चाहिए। नी यानी नी का अर्थ होता है नियमित, प्रत्येक इंद्रिय का अपना विषय निश्चित है, वो आंखें सुनने का कार्य नहीं करेगी। और बोध यानी ज्ञान, उसको उसके थे इसलिए अभी नी और बोध, आभिनिबोधिक शब्द तैयार हुआ। आभिनिबोधिक ज्ञानी, कौमा लगाओ, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों के मोहनीय विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 66 सागर है। हाँ, मतिशुत और अवधि तीनों को लिया एक साथ, क्यों? क्योंकि सम्यक में रहने का उनका जघन्य काल अंतर्मूर्त रहे तब उनके ये सब थे, और फिर मिथ्या तो में चले गए, तो एक अंतर्मूर्त घटित हुआ। और फिर उत्कृष्ट कुछ अधिक 66 सागर। हाँ, देवों के मनुष्यों के चलते रहे। हाँ, क्षायिक हुआ तो भी क्या, ये तो आभिनिबोधिक श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी चल रहे। यहाँ क्षायिक भी सम्यक तो हुआ तो भी मति श्रुत अवधि तो चलते रहे ना, उसमें क्या फर्क हुआ? हाँ, साधिक में वो क्षायिक होकर हाँ मोक्ष चले। तथा मोहनीय अविभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये कहाँ लेना? मोह की अविभक्ति मतिश्रुता अवधि ज्ञान के साथ कौन कौन से गुणस्थान लेना? 12वां 13वां 13वें में केवल ज्ञान है, 12वां ही लेना है, मतिश्रुता अवधि और अविभक्ति 12वें गुणस्थान का काल लेना। इसलिए जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मूर्त बताए। मनोपर्य ज्ञानियों के मोहनीय विभक्ति का जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल देशों न पूर्व कोटि है। यानी मनोपर्य ज्ञान उत्पन्न हुआ और देशों न पूर्व कोटि तक चला, क्योंकि संयम होने के बाद वो उत्पन्न होगा, इसलिए देशों ने पूर्व कोटि लिया। देखो मति शुद्ध ज्ञान में और अवधि ज्ञान में वो अनेक भवों तक चलता रहता है, सम्यक को भी चलता रहे और उनके मति शुद्ध अवधि भी चलता रहे, इसलिए उसके अनेक भवों के मिलकर साधिक 62 सागर बताया है, सॉरी 66 सागर बताया, साधिक 66। और यहाँ पर मन परे ज्ञान वो तो अन्य भव में चलेगा नहीं, एक ही भव में होगा, तो इसलिए उसको कुछ कम लिया, 8 साल के बाद संयम ग्रहण किया तब जाके उस किसी को होगा, इसलिए वहां से लेकर आयु के अंत तक। तथा मोहनीय अविभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। मन परे ज्ञान और मोहनीय की अविभक्ति कहाँ पर लेना? 12वां गुणस्थान, 11वें में तो सत्ता है ना। हाँ, विशेषण मत्य ज्ञान यानी मत्य अज्ञान और श्रुता ज्ञान यानी श्रुता अज्ञान अभव्य जीवों के अनादि अनंत, कॉमा लगाओ, भव्य जीवों के अनादि शांत और जिन्हें एक बार सम्यक दर्शन होकर पुनः मिथ्यात्व की प्राप्ति हुई है उसके साधि शांत काल तक पाया जाता है। उनमें से यहाँ साधि शांत मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान की अपेक्षा मोहनीय विभक्ति का काल बताया है। जो सम्यक जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर्मूर्त के काल के भीतर पुनः सम्यक्तों को प्राप्त कर लेता है उसके उक्त दोनों अज्ञानों के साथ मोहनीय विभक्ति अंतर्मूर्त काल तक पाई जाती है। ये आसान है समझना, उसका कुमति कुशुत ज्ञान अंतर्मूर्त तक रहा, सादी है ना, उसको सम्यक्तों से आया और फिर सम्यक्तों में चला गया। तथा जो सम्यक्त्वी मिथ्यात्व को प्राप्त होकर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक मिथ्यात्व के साथ परिभ्रमण करके, ये कुछ कम क्यों किया? देशों पूर्व कोटि का सवाल नहीं उसमें, कुछ कम यानी जो अंतिम भव मिलेगा, समय दर्शन होगा और हाँ वो अंत के बाद में समय दर्शन होने तक उसको मति अज्ञानी रखना, अंतिम भव में फिर वो सम्यक तो प्राप्त करेगा, संयमी होगा, मोक्ष चला जाएगा, वो घटाना पड़ेगा, उसको घटाना है, वो छोटे भी आयु हम लेके लेते हैं तो उसको कम करना उसमें देशों में। हाँ 8 साल और कुछ अंतर्मूर्त मिनिमम आयु के साथ ले लेना। हाँ वो जो कुछ है यानी वो मुनि भी डायरेक्ट मुनि भी होते हैं तो फिर वो अंतर्मूर्त सारे चले जाएंगे, फिर वो शपक श्रेणी मांडेगा, उसको लेना। तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक पाई जाती है, यह लिखा ना, कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक मिथ्यात्व के साथ परिभ्रमण करके सम्यक्त को प्राप्त होता है उसके मोहनीय विभक्ति उक्त दोनों अज्ञानों के साथ कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक पाई जाती है। जो उपशम सम्यक दृष्टि देव या नारकी जीव उपशम सम्यक्त्व के काल में एक समय शेष रहने पर सासादन सम्यक दृष्टि होकर द्वितीय समय में मरकर जब तिर्यंच या मनुष्य हो जाता है तब उसके ये विभंग ज्ञान के साथ एक समय घटित करना है ना, तो देव नारकी लिया क्यों? देव और नार के नियम से अवधि ज्ञानी होते हैं। अब वो सम्यक दृष्टि हुआ तो वो सुअवधि हो गए। हाँ अब सासादन में एक समय के लिए गए तो वो विभंग ज्ञान हुआ एक समय का। सासादन सम्यक दृष्टि होकर द्वितीय समय में मरकर जब तिर्यंच या मनुष्य हो जाता है तब उसके विभंग ज्ञान के साथ सासादन गुण स्थान में मोहनीय विभक्ति एक समय तक देखी जाती है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था है तो विभंग ज्ञान नहीं पाया जाएगा। विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए अपर्याप्त अवस्था के काल को कम कर देने पर सातवें नरक में विभंग ज्ञान के साथ मोहनीय विभक्ति देशों न 33 सागर काल तक प्राप्त होती है, ये हमने देखा था वहां पर। मति ज्ञानादि तीनों ज्ञानों के साथ, ये सुमति सुश्रुत और सुअवधि की बात है। जब मति ज्ञान ऐसा कहेंगे तो सुमति की बात होती है, और मति अज्ञान वो अलग से कहेंगे। तीनों ज्ञानों के साथ मौनीय विभक्ति अंतर्मूर्त काल तक रहती है, यह तो स्पष्ट है। पर उत्कृष्ट रूप से साधिक 66 सागरोपम काल तक कैसे पाई जाती है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। किसी एक देव या नारकी जीव ने उपशम सम्यक्त्व से वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया और वह उसके साथ वहां अंतर्मूर्त रहा। अनंतर अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, पुनः क्रम से 20 सागर आयु वाले देवों में, पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में, 22 सागर आयु वाले देवों में और पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। कितने गए? 22 सागर हो गए वहां पर, 20 सागर पहले लिए फिर 22 हो गए। पुनः यहाँ क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति का प्रारंभ करके 24 सागर आयु वाले देवों में उत्पन्न होकर और वहां से आकर पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर अत्यल्प आयु के शेष रहने पर क्षपक श्रेणी का आरोहण करके क्षीण कषायु हो गया। पहले 20 फिर 22, 44 हो गए ना, और फिर 24। 42 और 24, हाँ 66। वो पूर्व कोटि है ना, वो उन सागरों में से घटाना। वहाँ वो जो 22 या 24 जो कहेंगे हम, हाँ उसमें उतने कम वाले आयु वाले देव कहेंगे, क्योंकि उसका यहाँ सागर बढ़ेंगे नहीं। उसके मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के साथ ये साधिक ले लिया उन्होंने, चलो साधिक 66 सागर काल तक मौनीय विभक्ति पाई जाती है। यहाँ साधिक से 4 पूर्व कोटि काल का ग्रहण किया है। इन तीनों ज्ञानों के साथ मौनीय विभक्ति का अभाव अंतर्मूर्त काल तक होता है, यह स्पष्ट ही है, यानी वो 12वें गुणस्थान में। कोई एक मनपर्य ज्ञानी मनपर्य ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर अंतर्मूर्त काल में क्षीण कषाय हो जाए तो उसके मनपर्य ज्ञान के साथ अंतर्मूर्त काल तक मौनीय विभक्ति पाई जाती है। पूर्व कोटि की आयु वाले जिस मनुष्य ने 8 वर्ष की वय में ही संयम के साथ मनपर्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके देशोन पूर्व कोटि काल तक मनपर्य ज्ञान के साथ मौनीय विभक्ति पाई जाती है। ये तो आसान है ना, केवल ज्ञान की, हाँ ज्ञान मार्गणा में, हाँ अविभक्ति केवल ज्ञान के साथ अविभक्ति हो साधी अनंत होगा। और यहाँ अगर आपको इसमें घटित करना है, भव में, मनुष्य गति में अगर लगाना है, तो जैसे हमने गति में देखा था अविभक्ति के साथ केवल ज्ञान कितना होगा, गति की अब बात, यहाँ लगाना है अकेले केवल ज्ञान में लगाना है तो साधी अनंत काल कहेंगे। हाँ मोहिनी की अविभक्ति, गति की बात वो गति मार्गणा में आएगी, यहाँ ज्ञान मार्गणा में केवल मात्र ज्ञान की बात करेंगे। हाँ साधी अनंत काल अविभक्ति, वहां तो विभक्ति घटित नहीं होगी ना, इसलिए वो अभिव्यक्ति की बात। उसी में क्षायिक लिया ना, वो औपशमिक का भी उसमें काल लेना है ना। हाँ क्षायिक का अलग नहीं है लेंगे। हाँ शाही के बाद 24 सागर ही लिए ना, ये ले ना शाही समय तो प्रारंभ करके 24 सागर आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ, पहले शाही करके वो 24 में हो गया, यानी उसके पहले 42 वेदक का 66 सागर है। उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को उस भी कर सकते हैं, उससे तो ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि उत्कृष्ट रूप जो लिखा है उससे तो एक्सीड नहीं होगा, सूत्र से कुछ विरुद्ध नहीं हो सकता। उसमें 66 सागर में जो कुछ घटित करना है वो कर दो। वेदक में 66 सागर और फिर क्षायिक हो जाएगा और फिर हाँ ऐसा क्यों नहीं लेते, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ जो लिखा है ना, उत्कृष्ट रूप से 66 सागर होता है, तो ये सूत्र की बात है, तो इससे तो अधिक घटित नहीं होता, हमारे बुद्धि तर्क उसमें नहीं चलता। आगे ये हो गया ना सब, ज्ञान मार्गणा हो गया। अभी संयम मार्गणा, संयम मार्गणा में कितने भेद है? 6 है, ये कहते 7 है। देख संयमी, संयमियों के 5, संयमासंयम और असंयम, ऐसे 7 भेद हो गए। तो संयम मार्गणा के अनुवाद से संयतों के, अभी संयतों में विभक्ति है क्या नहीं है? नहीं भी है, ऐसा विकल्प होगा कि नहीं होगा?
हाँ,
दोनों है। हाँ, तो संयतों के मौनीय विभक्ति और मौनीय अविभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल देशों न पूर्व कोटि है। देखो विभक्ति का जघन्य संयत है और मौनीय की विभक्ति है और जघन्य काल, तो कैसा घटित करना है? हाँ, वो संयमी हो जाएंगे जब अंतर्मूर्त बाकी है अर्यंत होने के लिए। अर्यंतों का काल नहीं ले, अर्यंतों को भी वो संयतों में लेना पड़ेगा। मोक्ष जाने के अंतर्मूर्त पहले संयत हो गए, क्योंकि संयत कहेंगे तो 14वें तक संयत कहेंगे। हाँ, तो अंतर्मूर्त में मोक्ष प्राप्त करिए, सब मिलकर भी अंतर्मूर्त हो जाएगा। वो अविभक्ति का काल, विभक्ति का काल क्षपक्षेणी मानने तक, क्षपक्षेणी के पूर्व एक अंतर्मूर्त उन्होंने संयम लिया, अंतर्मूर्त में क्षपक्षेणी मान ली, 12वें में गए तो अविभक्ति हो गए, फिर उनके आयु भले पूर्व कोटि कितनी भी रही बाकी, वो उत्कृष्ट में आयु, वो अविभक्ति का काल गिनेंगे हम। विभक्ति के साथ संयम अंतर्मूर्त तक रहा, हाँ तुरंत ही श्रेणी मांडी तो अविभक्ति हो गए। विभक्ति में कितने संयम और विभक्ति अंतर्मूर्त तक रहे, 6वें 7वें में हजारों बार किया और फिर क्षपक श्रेणी मांडी, 10वें तक सब मिलकर भी अंतर्मूर्त ही हुआ। संयम के साथ या कैसे ले सकते हैं, संयम से असंयम में चले गए ऐसा भी ले सकते, परंतु वो विभक्ति से विभक्ति चालू रही ना, असंयम में आ गए। अच्छा, दोनों ही हो सकते हैं, संयम के साथ विभक्ति रही यानी संयम अंतर्मूर्त तक रहा, नीचे के गुणस्थानों में आ गए। अविभक्ति, अविभक्ति में बात डालो मत, संयम रहा उनका अंतर्मूर्त तक, पहले से 7वें में गए, 6वां 7वां हजारों बार के अंतर्मूर्त तक रहे, फिर वापस नीचे आए। हाँ, इस तरह से ले सकते। अभी यहाँ क्या लिखा हम पढ़ेंगे। संयम मार्गणा के अनुवाद से संयतों के मौनीय विभक्ति और मौनीय की अविभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल देशों न पूर्व कोटि है, दोनों भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयम को प्राप्त संयतों के। अब ये संयम के भेद करके बता रहे हैं, विशेषार्थ में आगे आएगी बात। तो सामायिक और छेदोपस्थापना गुणस्थान 6 से 9 है, संयतों के मौनीय विभक्ति का कितना काल है? जघन्य काल एक समय। बोलो कैसे होगा? जघन्य काल एक समय। बोलो एक उपशम श्रेणी चढ़ा तो सूक्ष्म सांप्राय में गया, या उतरते समय नवे में आया तो एक समय में सामयिक छेदोपस्थापना होकर मरण हुआ तो असंयम में चला गया देव में। छठे से है सातवें में प्राप्त करते ही मरण नहीं होगा, उपशम समय को में तो नहीं होगा, आपके वेदक भी हो जाएगा। हाँ हाँ, चौथे में सातवें में जाते ही मरण हुआ एक समय में, करण परिणाम में नहीं होता है ना। उतरते समय लेना चाहिए ऐसे लगता है। उपशम श्रेणी में उतरते समय मरण की अपेक्षा ही है, मरण की अपेक्षा होता है, उतरने वाले मरण की अपेक्षा एक समय घटित होगा। यहाँ नहीं लिखी है, हम सोच रहे हैं आगे चलकर पढ़ेंगे। जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल देशानुपूर्व कोटि है। अब परिहार विशुद्धि की बात पढ़ेंगे। परिहार विशुद्धि संयत, इसके गुणस्थान छठे सातवां। मौनीय विभक्ति का कितना काल है? जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल देशानुपूर्व कोटि। देशानुपूर्व कोटि में कितना घटाना? दूसरे कोई मालूम है जिसको? 38 साल घटाने पड़ेंगे, क्योंकि 30 साल तक तो घर में रहा, फिर मुनि दीक्षा ली, फिर 8 साल यानी पृथक वर्ष तक वो केवली के पाद मूल में उन्होंने प्रत्याख्यान पूर्वक अभ्यास किया, तब जाके उनको प्राप्त हुए, तो उसको इतना कम करना पड़ेगा। इसी प्रकार संयता संयतों का भी कथन करना चाहिए। तो अंतर्मूर्त कैसे घटित होगा? परिहार विशुद्धि एक अंतर्मूर्त, श्रेणी मांडी श्रेणी में चढ़ा, उपशम श्रेणी में चढ़ा या क्षपक श्रेणी चढ़ा, ऊपर के उन स्थानों में जाता है तो परिहार विशुद्धि नहीं रहता, सामयिक छेदों पर स्थापना हो जाता है। हाँ मरण होगा उसके, होता है ना, क्या अंतिम भवन होता है। हाँ हाँ, संयता संयतों का भी कथन करना है। इसी प्रकार संयता संयतों का, संयता संयत में भी एक अंतर्मूर्त कम से कम और उत्कृष्ट देशानुपूर्व कोटि। देशानुपूर्व कोटि में कितना घटाना है? बोलो। हाँ ले लो। हाँ वही कर्मभूमि है ना, वहां पर स्वयंभू रमण समुद्र का तीर्यंच सम्मूर्छन लेना है, वेदक समय को लेना है तो अंतर्मूर्त में प्राप्त करता है, पर्याप्ति पूरी होने पर उसको ले सकते हैं। मनुष्यों में लेना है तो फिर 8 साल के बाद होगा वो। सूक्ष्म सांप्रायिक संयतों के मौनी विभक्ति का कितना काल है? जघन्य काल एक समय। ये भी सूक्ष्म सांप्राय में आया और एक समय में मर गया। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। यथाख्यात शुद्धि संयतों के मौनी विभक्ति का कितना काल है? जघन्य काल एक समय, यानी 11वें में आते ही एक समय में मरण हुआ। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। यथाख्यात संयतों के मौनी अविभक्ति का काल, यथाख्यात संयम और मौनी की अविभक्ति कौन सा गुणस्थान? 12वां 13वां 14वां। मनुष्यों के समान जानना चाहिए, मिनिमम अंतर्मूर्त होगा और उत्कृष्ट देशानुपूर्व कोटि। असंयतों के मति अज्ञानियों के समान जानना चाहिए। मति अज्ञान में जो घटित किया वही यहाँ पर असंयत, क्योंकि पहला गुणस्थान भी असंयत है ना। हाँ तो असंयत यानी पहले संयत में से असंयत में लाना चाहिए, या संयमासंयम में से असंयमी होना चाहिए। तो पहले वो ऊपर के गुणस्थान में था, फिर गिर गया, असंयमी हुआ, फिर पूर्व अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक गया, फिर जाके फिर संयमी हुआ। क्योंकि असंयम का सादि शांत काल लेना चाहिए ना, अनादि का नहीं ले सकते क्योंकि वो तो असंयत ही था। संयत में से असंयत होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है देखेंगे, संयम परिहार विशुद्धि संयम और संयमासंयम का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल और नहीं चाहिए। हाँ, जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल देशों न पूर्व कोटि है, इससे कम नहीं है। एक समय कहाँ का अंतर्मूर्त ही देखा है, अंतर्मूर्त है ना वो परिहार विशुद्धि है, इतनी विशुद्धि के साथ वो अंतर्मूर्त तक रहेगा। इसलिए इनमें मोहनीय का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल देशों ने पूर्व कुटी कहा है। इतनी विशेषता है कि परिहार विशुद्धि के काल में देशों का अर्थ 38 वर्ष और देश संयम के काल में देशों का अर्थ अंतर्मूर्त पृथक्त्व करना चाहिए। पृथक्त्व अंतर्मूर्त, कुछ अंतर्मूर्त, वो भी वो हमने देखा ना सम्मूर्छन तिर्यंच की अपेक्षा से। सामायिक छेदोपस्थापना और सूक्ष्म सांप्राय का जघन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा से कहा है, उसमें से पहले के दो संयमों का एक समय काल सामायिक और छेदोपस्थापना वाला उतरने वाले जीव के 10वें से 9वें आकर और एक समय ठहर कर मरने वाले के होता है। सूक्ष्म सांप्राय का एक समय काल उपशम श्रेणी पर आरोहण करने वाले के 10वें में एक समय ठहर कर मरने वाले के तथा उपशम श्रेणी से उतरने वाले के 11वें में से 10वें में आकर और एक समय ठहर कर मरने वाले के होगा। चढ़ने वाले को भी हो सकता है, उतरने वाले के भी। सामायिक और छेदोपस्थापना का उत्कृष्ट काल देशोन पूर्व कोटि स्पष्ट ही है। सूक्ष्म सांप्राय संयम का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त 10वें गुणस्थान के काल की अपेक्षा कहा है। यथाख्यात संयम का एक समय काल 11वें गुणस्थान में एक समय रहकर मरने वाले जीव के होता है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त उपशांत मोह गुणस्थान के काल की अपेक्षा से कहा है। इस प्रकार जहाँ जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल हो वहाँ मोहनीय कर्म का उतना काल समझना चाहिए। हमें तो वो काल तो बताए गुणस्थानों का है उसका, परंतु हमें मोहनीय के विभक्ति की बात चल रही है। जिन संयतों ने मोहनीय कर्म का नाश कर दिया है उनके मोह का अभाव जघन्य रूप से अंतर्मूर्त काल तक होता है, क्योंकि आयु कर्म के अंतर्मूर्त शेष रहने पर जो क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हैं वे मोह के बिना संसार में अंतर्मूर्त काल तक ही रहते हैं। तथा पूर्व कोटि की आयु वाले जिन संयतों ने 8 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त किया है उनके देशों ने पूर्व कोटि काल तक मोहनीय का अभाव पाया जाता है। यहीं रुकते हैं अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। अश्विन भाई।